Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Adiguru Shankaracharya Virachit दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवोद् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनां वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महान् योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलं बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तम् सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्र त्राद्यात्मना वेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये स पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरं वांश्यनलोऽनिलोऽम्बरमहर् नाथो इमां सुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्। आदिगुरु शंकराचार्य जी सर्वज्ञ ज्ञानमूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति शिव की स्तुति करते हुए परम ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। शिव तत्व स्वयं क्या है, जीव तत्व स्वयं क्या है, जीव का शिवत्व कैसे संपन्न होता है और कौन शिवत्व संपादन करता है, शिव को जीव भाव की प्राप्ति का कारण क्या है, इन सब का विचार करना ही दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रयोजन है। प्रसंग चल रहा था तीसरे श्लोक का, यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिं भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। प्रश्न ये चल रहा था कि जितने भी व्यवहार के योग्य पदार्थ हैं ये समस्त पदार्थों में दो चीज होना जरूरी है, तभी ये व्यवहार योग्य होंगे। वे दो चीज का नाम है अस्तिता और प्रकाशता, यानी वस्तु होना चाहिए, सत्ता वाले होने चाहिए। स्वप्न के पदार्थ के खुद की सत्ता नहीं, इसीलिए व्यवहार नहीं कर पाते हैं। और आकाश के पुष्पों का स्वयं की कोई सत्ता नहीं, इसीलिए व्यवहार नहीं हो पाता है। व्यवहार होने के लिए उसकी सत्ता होनी चाहिए, और केवल सत्ता होने से व्यवहार नहीं चलता है, साथ में वह सत्तावान पदार्थ का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी समस्त लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार हो सकता है। विचार का विषय क्या है, तो बोले इन पदार्थों में जो सत्ता है और जो प्रकाशता है, ये खुद पदार्थ के अपनी स्वतंत्र सत्ता है कि इनमें जो सत्ता है वह कहीं अन्यत्र से आगंतुक है, किसी और की सत्ता को प्राप्त करके ये सत्तावान हुए हैं कि अपनी सत्ता में स्वयं पदार्थ टिके हुए हैं। इसी तरह किसी और प्रकाश से ये प्रकाशित होकर प्रतीत होते हैं या अपनी ही प्रकाश से प्रकाशित होकर प्रतीत होते हैं। सामान्य अज्ञानी व्यक्तियों से पूछा जाए तो वे लोग यही कहेंगे कि हर पदार्थ अपनी स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर है और हर पदार्थ प्रकाशित होने में वह अपने ही प्रकाश का प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में गहरी विचार किया जाए तो ये सिद्ध नहीं होता, पदार्थ कोई भी अपनी सत्ता में सत्तावान नहीं है। और पदार्थों में प्रकाश है ये बात तो मूर्ख भी स्वीकार नहीं करेगा, विद्वान तो स्वीकार करेगा ही नहीं, साथ में मूर्ख भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि वस्तु में स्वतः प्रकाशित होने की क्षमता है। क्योंकि अंधकार कमरे में रखे हुए पदार्थ प्रकाश के बिना, पदार्थ के इतर पदार्थ से भिन्न प्रकाश के बिना वे पदार्थ प्रकाशित नहीं होते, और जब प्रकाश के लिए यानी पदार्थों को प्रकाशित होने के लिए पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जिस तरह अन्य प्रकाश से पर प्रकाश से तमाम लौकिक व्यावहारिक पदार्थ प्रकाशित होते हैं, इसी तरह यह भी मानना पड़ेगा कि अन्य के सत्ता से ये सत्तावान हुए हुए हैं। किसकी सत्ता से ये सत्तावान हुए हैं और किसके प्रकाश से प्रकाशित हुए हैं, उस बात को ये तीसरे श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं उत्तर देते हुए। यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते, जिसकी स्फुरणात् से, यस्यैव स्फुरणम् जिसकी स्फुरणा से यानी जिसके प्रकाशित होने पर ये तमाम असत कल्पार्थक पदार्थ भी सदात्मकम भासते, असत वस्तु भी यानी मिथ्या वस्तु भी सत्य की तरह प्रतीत होते हैं। इस वाक्य से ये सिद्ध हुआ, हमको ये समझना निश्चित है, भले ही यह दृश्यमान नाना रूपात्मक विश्व प्रपंच हमारे लिए पूरी तरह व्यावहारिक सत्ता वाले हों, फिर भी यह पदार्थ है मूल रूप में प्रातिभाषिक हैं, पारमार्थिक नहीं है, है असत कल्पक, इनकी अपनी सत्ता नहीं है, अन्य के सत्ता में सत्तावान हुए हुए हैं। और जब भी जो भी पदार्थ दूसरे के सत्ता में सत्तावान हो रहा हो और जो भी पदार्थ दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हो, उस पदार्थ के सत्यता के बारे में स्वतः प्रश्न खत्म हो जाता है, यानी वह सत्य हो ही नहीं सकता है। जैसे मंद अंधकार में सर्प दिखाई पड़ा, सड़क के किनारे कहीं जा रहे थे, सर्प का संस्कार मन में था, मन में डर था, ये रात्रि के समय में ये खेत के रास्ते से हम चल रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ घास है, झाड़ हैं, ऐसे झाड़ और झुंड में के बीच में तो प्राय करके सर्प हुआ करते हैं और सर्प हमारे घातक है, इत्यादि इत्यादि मन में जो संस्कार जग रहे थे, उन्हीं संस्कार को लेकर इन्हीं चिंता और चिंतन के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, संयोग से वहां एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था और वो रस्सी के टुकड़े को स्पष्ट रूप से आपने जान नहीं पाए कि ये रस्सी है, निश्चय नहीं कर पाए, तो उसको सर्प होने में आपके सर्प का संस्कार का बल मिल गया, तो उस रस्सी को सर्प के रूप में परिणत कर दिया। किसने? तो आपके सर्पों के संस्कार ने रस्सी को सर्प के रूप में परिणत कर दिया है, इसी को विक्षेप शक्ति कहते हैं, इसी को विवर्त कहते हैं वेदांत दर्शन में। अब विचार करो कि वो जो प्रतीयमान सर्प है, जिस सर्प के आपने भ्रांति निश्चय किया है, हालांकि आपको भ्रांति है, ये बुद्धि नहीं हुई है, है भ्रांति, लेकिन भ्रांति हुई है ऐसे आपको बुद्धि नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि ये सचमुच वास्तव में मैं जैसा सोच रहा था वैसे ही ये सर्प यहां निकल आ गया, अब ये मुझे काटेगा, आगे बढ़ना मेरे लिए ठीक नहीं है, आपके पांव वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़ सके, और संभव है कि आप यदि कमजोर दिल वाले होते तो फिर आप घबरा भी जाएंगे, आपके शरीर से पसीना निकल आएगा, आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और आपके कदम आगे न बढ़कर पीछे मुड़ जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे। और पूछने वाला आपसे पूछेगा कि आप तो फलाने गांव जा रहे थे, तो क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? बोले, जा तो रहा था, लक्ष्य मैंने छोड़ा नहीं है, परंतु व्यवधान आ गया, क्या व्यवधान आ गया? बोले रास्ते में बहुत बड़ा सर्प आ गया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका सर्प के चलते। बोले अच्छा सर्प आ गया है, बताओ बताओ कैसा है वो सर्प। तो वह दूसरा व्यक्ति सर्प, उस सर्प को देखने की जिज्ञासा करता है कि बताओ कहां है और कैसा है उस सर्प को। अरे ऐसे सर्प को तो कितना मैंने मार डाला है, चलो उसको मार देता हूं, भगा देता हूं। हाथ में मोटा सा डंडा उठा लिया उस दूसरे व्यक्ति ने। जरा वो साहसी था, जगत में कोई दो चार ही साहसी होते हैं, सभी साहसी नहीं होते हैं। हा तो कोई साहसी था वह, वो हाथ में एक हाथ में डंडा ले लिया, एक हाथ में टॉर्च ले लिया और उसको आगे लगाया। चलो बोले मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, मुझे सर्प काटेगा। चलो अच्छा तुम पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं। वो आगे टॉर्च जलाता हुआ हाथ में डंडा लेते हुए और बिल्कुल तैयारी के साथ आगे बढ़ा। उसने कहा कि कहां पर है? तो बोले और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। तो आगे चलता गया तो बोले हां इसी के आसपास है, ये पेड़ है ना, इसी पेड़ के आसपास है कई सर्प। उसने लक्षण बताया पहले व्यक्ति ने, तो दूसरा व्यक्ति ने उसी के आसपास अपने हाथ का टॉर्च की रोशनी डाली, किधर है किधर है किधर है। तो अचानक वहां सर्प रस्सी दिखाई पड़ी। बोले कहां है सर्प? बोले यहीं पर था सर्प, इसी पेड़ के नीचे इसी पत्थर के पास सर्प बैठा हुआ था। बोले जो लक्षण तुम बता रहे हो पेड़, पेड़ भी यहीं वहीं पर है, और जो बता रहे हो पत्थर, वो पत्थर भी यहीं है, और पत्थर के बिल्कुल पास बैठा था सर्प तुम कह रहे हो, वहां तो रस्सी है देख लो। हा रस्सी है? बोले हां देख लो। नहीं नहीं भाई सर्प था, और तुम कह रहे हो सर्प था, हम वह कह रहे हैं रस्सी है। इधर उधर कहीं कोई निशान नहीं है, रस्सी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उस पहले व्यक्ति को प्रतीत होने वाला जो सर्प है वह असत्कल्पार्थक है। हमने कल भी इस बारे में थोड़ा सा संकेत किया था, पदार्थों के असत होने में और असत तुल्य होने में अंतर है। जो असत तुल्य हैं वे पदार्थ प्रतीत होते हुए वह असत होते हैं, और जो असत होते हैं वह प्रतीत ही नहीं होते। असत होने के नाते ही प्रतीत नहीं होते, वह सर्वथा असत हैं, और असत तुल्य उनको कहते हैं, वह हैं असत लेकिन प्रतीत होते हैं। इसी को मिथ्या बोलते हैं वेदांत में। असत कल्पार्थक ये शब्द का अर्थ होता है मिथ्या पदार्थ, और मिथ्या पदार्थ का अर्थ होता है जो पदार्थ जहां जिस रूप में प्रतीत हो रहा है वो पदार्थ वहीं उसी रूप में प्रतीत न होना, उसी को कहते हैं मिथ्या पदार्थ, असत कल्प कहते हैं। इसी को असत वस्तु के बारे में, मिथ्या वस्तु के बारे में व्याख्या करते हुए आचार्यों ने एक लक्षण बना ली है, स्व अधिष्ठाने वादमानत्वम मिथ्यात्वम। मिथ्या शब्द का यह अर्थ है अपने ही अधिष्ठान में बाधित होता हो तो उस पदार्थ को मिथ्या कहते हैं। जिस अधिष्ठान में जो पदार्थ प्रतीत हो रहा है उसी अधिष्ठान में वो ही पदार्थ बाधित होता हो तो उसको कहते हैं मिथ्या। स्वाधिष्ठान बाधमानत्व मिथ्यात्वम, और दूसरी जगह लक्षण बनाया ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्वम। ये दो लक्षण है मिथ्या के लिए। ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने वाले पदार्थों को मिथ्या कहते हैं, या अपने ही अधिष्ठान में बाधित होने वाले पदार्थों को मिथ्या कहते हैं। ये दोनों बात आप ध्यान से सुन लेना। सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, रस्सी के बिना सर्प सिद्ध न होने के कारण सर्प का अधिष्ठान क्या है? रस्सी है। और स्व शब्द का अर्थ होता है सर्प, अधिष्ठान शब्द का अर्थ हो गया रस्सी। स्व अधिष्ठान माने सर्प का जो अधिष्ठान, प्रतीयमान सर्प का जो अधिष्ठान रस्सी, उसी रस्सी में उस सर्प का बाध हो जाना, जिस अधिष्ठान में सर्प दिख रहा था उसी अधिष्ठान में सर्प का बाध हो जाना, इसको मिथ्या कहते हैं। स्वाधिष्ठाने बाधमानत्व मिथ्यात्म। और दूसरी बात, ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्म, ज्ञान के द्वारा जिसकी निवृत्ति होती हो उसको मिथ्या कहते हैं, यानी ज्ञान के आते ही जो हट जाता है उसको मिथ्या कहते हैं। या ज्ञान उपलक्षित दृष्टांत में प्रकाश ले लेना, प्रकाश के द्वारा जो निवृत्त हो जाता है उसको मिथ्या कहते हैं। डोरी में प्रतीयमान सर्प किसके द्वारा हटा? प्रकाश के द्वारा हट गया। प्रकाश के द्वारा हटने वाला होने के कारण उसको मिथ्या कहते हैं। और असली सर्प होता तो फिर प्रकाश के द्वारा न हटता। असली सर्प होता तो क्या प्रकाश के द्वारा हटता? नहीं हटता। और असली सर्प होता तो स्वाधिष्ठान में बाध भी नहीं होता। जिस जमीन में सर्प प्रतीत हो रहा था उसी जमीन में यदि असली सर्प होता तो फिर बाध नहीं होता, न हटता, वहीं बना रहता, वहीं डटा रहता। ये दोनों लक्षण मिथ्या के लिए हैं। ये जगत के तमाम पदार्थ भी ये दो लक्षण में घट जाते हैं। एक तो यह है कि ये स्वाधिष्ठान बाधमान है, हर पदार्थ जिस अधिष्ठान में प्रतीत हो रहे हैं उसी अधिष्ठान में ये बाधित हो जाते हैं। दूसरी बात, ज्ञान निवृत्त होता है, स्वरूप ज्ञान होते ही पदार्थ सब निवृत्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। स्वरूप ज्ञान के बाद ये सारे के सारे पदार्थ ज्ञान बाधित हो जाने के कारण ये सारे पदार्थ मिथ्या हैं। वेदांत कभी भी जगत के प्रतीयमान पदार्थों को असत नहीं कहता, मिथ्या कहता है। और इसीलिए मिथ्या को ही दूसरे शब्द से कह दिया है, असत कल्प क। असत कल्प यानी कल्प शब्द का अर्थ होता है तुल्य, असत तुल्य। तुल्य शब्द का अर्थ होता है स्वरूप वाला, असत जैसा, असत तुल्य, असत कल्पार्थ। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत् कल्पार्थकम् भासते, जिसकी स्फुरणा से असत कल्प भी सत रूप में प्रतीत होता है। इसी को तुलसीदास जी ने इस चौपाई से कहा है, झूठेऊं सत्य जाहि बिनु जाने, झूठा वस्तु भी सत्य प्रतीत होता है। कब? बोले जे ही बिनु जाने, जिसके न जानने से झूठा वस्तु भी सत्य प्रतीत होता है। जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, दृष्टांत दिया, जैसे रस्सी के बिना पहचाने भुजंग की प्रतीति होती है, सर्प की प्रतीति होती है, इसी तरह राम के न जानने से तमाम जगत की प्रतीति होती है, परमात्मा को न जानने से अनात्मा की प्रतीति होती है, ब्रह्म को न जानने से जगत की प्रतीति होती है, कूटस्थ को न जानने से जीव की प्रतीति होती है। देखो, तमाम जो जीव सत्ता की प्रतीति है, ये जीव सत्ता वास्तव में जीव के रूप में नहीं है, या कूटस्थ के न जानने से जीव के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जिस समय इस जीव को अनुसंधान के पश्चात अपने पारमार्थिक स्वरूप कूटस्थ का अपरोक्ष बोध होगा, तब उसको अपने बारे में कर्ता भोक्ता जीवपना था, वह जीवपना स्वतः ही बाधित हो जाएगा। भ्रांति के निवृत्त होते ही भ्रांतिजन्य पदार्थ की अस्तित्व ही निवृत्त हो जाता है। निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्य अपाय, जिस निमित्त से जो पदार्थ सिद्ध हुआ है वह निमित्त के हटते ही तब नैमित्तिक पदार्थ स्वतः बाधित हो जाता है, स्वतः हट जाता है। तो झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमी जाने जग जाई है राये, तुलसीदास जी, जिमी जाने जग जाई है राये, जागे जथा सपन भ्रम जाए, जिसको जान लेने के बाद सारा का सारा द्वैत प्रपंच नाम रूपात्मक विकल्प, वह पहले जिस सत्यत्व रूप में अनुभव में आ रहा था अब उसी रूप में सत्यत्व के रूप में अनुभव में नहीं आएगा। ये बात नहीं है कि अनुभव में नहीं आएगा, ये बात नहीं है, अनुभव में यथावत आता ही रहेगा। जागतिक पदार्थ ज्ञान होने के बाद अनुभव में नहीं आता, ये बात नहीं है, अनुभव में आता रहेगा। अंतर क्या होगा? तो फिर तो अंतर यह है कि ज्ञान होने से पहले अनुभव में आए हुए पदार्थों के बारे में बिल्कुल पारमार्थिक सत्यत्व बुद्धि थी, अनुभव में आने के बाद इन्हीं पदार्थों की सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो जाएगी, पदार्थ नष्ट नहीं होंगे, ये ख्याल रख लेना। हाँ, ज्ञान होने के बाद प्रतीयमान पदार्थ नष्ट हो जाएंगे ये वेदांत नहीं कहता है। फिर वेदांत का क्या फायदा हुआ? जैसे पहले प्रतीत हो रहा था वैसे बाद में भी प्रतीत होता है द्वैत प्रपंच, तो फायदा क्या हुआ? तो उसका उत्तर यह है कि ज्ञान से पहले सत्य रूप में प्रतीत हो रहा था, ज्ञान के बाद सत्य रूप में प्रतीत न होकर मिथ्या रूप में प्रतीत होता है, ये फायदा है। और यदि सत्य रूप में प्रतीत होगा तो उसके प्राप्ति और अप्राप्ति में आपको सुख और दुख की प्राप्ति होगी, और मिथ्या रूप में प्रतीत होने पर उसके प्राप्ति और अप्राप्ति में न सुख और न दुख की प्राप्ति, यही फर्क है और कुछ नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति पानी का मरुभूमि में घूम रहा था और पानी से वह प्यासा था,